रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 75 जिलों में निर्वाचन सामग्री सहित मतपत्रों की ढुआई संपन्न। काठमांडू और भक्तपुर में कल होगी ढुआई। एकीकृत सुरक्षा योजना के अनुसार निर्वाचन की सुरक्षा व्यवस्था मिलाई गई है। नेपाली सेना द्वारा जानकारी। निर्वाचन के दौरान घायल होने वाले सुरक्षाकर्मियों के उपचार खर्च वहन करने का सरकार का निर्णय। नागढुंगा नौवीं से सड़क खंड का 85% निर्माण कार्य हुआ पूरा। और ब्रिटेन द्वारा रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 75 जिलों में निर्वाचन सामग्री सहित मतपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि काठमांडू और भक्तपुर को छोड़कर सभी जिलों में मतपत्र सहित सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत उपयोग होने वाले मतपत्र 75 जिलों में भेज दिए गए हैं। ये जानकारी आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जी सी ने दी। आयोग के अनुसार काठमांडू और भक्तपुर के निर्वाचन कार्यालयों में कल निर्वाचन सामग्री और मतपत्र पहुंचाए जाएंगे। आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन में 1,86,000 अस्थायी मतदाता कायम किए गए हैं। ये मतदाता समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत निर्धारित मतदान स्थल पर मतदान कर सकेंगे। इन अस्थायी मतदाताओं के लिए 143 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के सह प्रवक्ता कुल बहादुर जी सी ने ये जानकारी दी। मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बावजूद जो व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी में हटाए गए हैं या अन्य कारणों से अपने निर्धारित मतदान स्थल पर नहीं जा सकते, उन्हें अस्थायी मतदाता सूची में शामिल करने की व्यवस्था है। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, सेना, पुलिस, कारागार के थुनुआ और कैदी, निर्वाचन में खटाए गए कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी तथा संवैधानिक निकायों के प्रमुखों एवं पदाधिकारियों के नाम स्थायी मतदाता नामावली में शामिल है। नेपाली सेना ने फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन के दौरान और निर्वाचन पश्चात इन तीन चरणों में सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के निर्णय तथा राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निर्वाचन सुरक्षा के लिए परिचालन की गई नेपाली सेना ने पूर्व की तरह इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था की योजना तैयार की है। सरकार ने निर्वाचन के दौरान घायल होने वाले सुरक्षाकर्मियों और निर्वाचन पुलिस के उपचार खर्च वहन करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की कल की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने जानकारी दी कि निर्वाचन के दौरान घायल सुरक्षाकर्मियों का उपचार खर्च सरकार वहन करेगी तथा मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार बैठक में सरकार और जेएनजी आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुसार जेएनजी परिषद गठन करने का भी निर्णय किया है। यह जानकारी गृहमंत्री अर्याल ने दी। मंत्रिपरिषद बैठक ने 16वीं योजना के क्रियान्वयन कार्ययोजना को स्वीकृत करने, चीन सरकार के अनुदान सहयोग से स्तरोन्नति होने वाले कलंकी से वसुंधरा तक के चक्रपथ सुधार परियोजना के क्रियान्वयन समझौते के अनुसार कर छूट प्रदान करने तथा नेपाल रेड क्रॉस सोसायटी की केन्द्रीय कार्य समिति की तदर्थ समिति को 2083 साल असार मसान तक निरंतरता देने सहित अन्य निर्णय भी किए हैं। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री अर्याल ने दी। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के दिन पर्यटकों की आवाजाही के लिए कम से कम 2 दिन पहले अनुमति लेकर पर्यटकों के आवागमन के लिए वाहन संचालन करने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सवारी साधन की अनुमति संबंधी कार्यविधि 2082 में यह उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दिन कोई भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान नहीं रोकी जाएगी, इसलिए पर्यटकों के वाहन संचालन के लिए अनुमति की व्यवस्था की गई है। संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से तथा काठमांडू में आयोग से कम 2 दिन पहले अनुमति लेकर पर्यटकों के आवागमन हेतु वाहन संचालन किया जा सकेगा। यह जानकारी आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने दी। इसी प्रकार राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए भी कार्यविधि में प्रावधान किया गया है। साथ ही अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोग और मानवाधिकार आयोग को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के वाहन अनुमति लेकर ही संचालित किए जा सकेंगे। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के निर्वाचन प्रचार प्रसार में अवरोध करने पर 2,00,000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि संघीय कानून के अनुसार निर्वाचन का प्रचार प्रसार करने या मतदान का अधिकार प्रयोग करने से वंचित करने के उद्देश्य से बाधा उत्पन्न करना, अवरोध करना या करवाना अथवा थून छेक नजरबंद करना या करवाना, ऐसे कार्य करने पर 2,00,000 रूपये तक जुर्माना या 3 वर्ष तक कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। आयोग ने यह भी बताया है कि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन में सहभागी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के चुनावी प्रचार प्रसार की विभिन्न माध्यमों से निगरानी की जा रही है। बांके में 7,897 किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV टीका लगाया गया है। सभी को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से इस वर्ष 92% को टीका लगाया गया है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य कार्यालय बांके के जनस्वास्थ्य अधिकारी गोकर्ण गिरी ने दी। 8,584 को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 92% को सर्वाइकल कैंसर के विरूद्व टीका लगाया गया है। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मकवानपुर के हेटौरा उप महानगर पालिका 19 बस्तीपुर में ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में मोटरसाइकिल चालक मकवानपुर राक्सी रांग गांव पालिका ए के 22 वर्षीय संजीत स्यांगतांग और 18 वर्षीय अमोश थिंग शामिल है। ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन ने मास्को की महत्वपूर्ण तेल आय को कम करने के उद्देश्य से 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद का अब तक का सबसे बड़ा और नया प्रतिबंध पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में रूसी ऊर्जा आय, विशेष रूप से तेल निर्यात, साथ ही युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देने वाले सैन्य उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं को लक्षित कर लगभग 300 नए प्रतिबंध शामिल हैं। ब्रिटेन ने पुष्टि की है कि रूस के खिलाफ इस प्रतिबंध व्यवस्था के तहत अब तक 3,000 से अधिक व्यक्ति, संस्थाएं और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ये प्रतिबंध ब्रिटिश विदेश मंत्री एवेट कूपर के कीव दौरे और यूक्रेन की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किए गए नए समर्थन पैकेज के साथ लागू किए गए हैं। ब्रिटिश सरकार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने अब तक मॉस्को को 450 अरब डॉलर से अधिक की आय से वंचित किया है, जो कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के अगले 2 वर्ष के खर्च के बराबर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए 75 जिलों में निर्वाचन सामग्री सहित मतपत्रों की ढुआई संपन्न। काठमांडू और भक्तपुर में कल होगी ढुआई। एकीकृत सुरक्षा योजना के अनुसार निर्वाचन की सुरक्षा व्यवस्था में लाई गई है। नेपाली सेना द्वारा जानकारी, निर्वाचन के दौरान घायल होने वाले सुरक्षाकर्मियों के उपचार खर्च वहन करने का सरकार का निर्णय और ब्रिटेन द्वारा रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।